ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण बच्चे लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हमें बाप समान बनना है। ये हर ब्राह्मण आत्मा का लक्ष्य है। तो बाप समान में दोनों बाप आ जाते, शिव बाप भी और ब्रह्मा बाप भी। शिव बाप समान कर्मातीत बनना है और ब्रह्मा बाप समान सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। तो शिव बाप समान कर्मातीत बनकर घर चलना है, फिर घर से स्वर्ग में आकर ब्रह्मा बाबा की आत्मा श्री कृष्ण सो नारायण बनेगी, उनके साथ साथ राज्य करना है। तो कर्मातीत बनना बहुत आवश्यक है। अगर हम कर्मातीत नहीं बनेंगे तो भी घर तो चलेंगे, लेकिन कर्मातीत बनकर घर चलने में और बिना कर्मातीत बने घर चलने में बहुत अंतर है। जैसे आप इस लौकिक दुनिया में देखा होगा कि कोई बड़ा वीआईपी आता है तो उसके चारों तरफ गनमैन होते हैं, बॉडीगार्ड कहते हैं। उस गनमैन के बीच में वो वीआईपी बड़े शान से चलता है, लोग उसे नमस्कार करते। और आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई चोर या बदमाश पकड़ा जाता है तो उसके भी चारों तरफ बंदूक वाले होते, गनमैन होते। अब वो भी बंदूक के बीच में चल रहा है, चोर भी और बंदूक के बीच में वीआईपी भी चल रहा है। दोनों के चलने में कितना अंतर है। वो कितना शान से चल रहा है, लोग सलाम कर रहे हैं और ये सिर नीचे किए सबकी नजरों से गिरा हुआ है। तो अगर कर्मातीत बनकर चलेंगे तो सिर ऊंचा करके चलेंगे, धर्मराज भी सलाम करेगा, ब्राह्मण आत्माएं महानता की दृष्टि से देखेंगी। अगर आप कर्मातीत नहीं हुए तो सिर नीचे करना पड़ेगा, धर्मराज की सजा भी खानी पड़ेगी और ब्राह्मणों के नजर में स्वयं के प्रति बहुत ग्लानी की भावना महसूस होगी। इसलिए कर्मातीत बनना जरूरी है। तो कर्मातीत बनने के लिए विकर्मा जीत बनना आवश्यक है। जब विकर्म बनना बंद हो जाए तो जो विकर्म है वो योग करके खत्म करो। तो कर्मातीत बनने के लिए विकर्माजीत बनना जरूरी है, और विकर्माजीत बनने के लिए विदेही बनना जरूरी है। जब विदेही बनेंगे तब आप कर्मातीत बन सकते, विकर्माजीत बन सकते। और विदेही बनने के लिए निर्व्यर्थ बनना पड़ेगा। निर्व्यर्थ, व्यर्थ मुक्त, निर्व्यर्थ बनना पड़ेगा। और निर्व्यर्थ बनने के लिए ब्राह्ममुहूर्त अर्थात अमृत बेला अशरीरी होकर बाप को याद करने का विशेष अभ्यास करना पड़ेगा। तो कर्मातीत बनने के लिए विकर्माजीत, विकर्माजीत बनने के लिए विदेही, विदेही बनने के लिए निर्व्यर्थ, और निर्व्यर्थ बनने के लिए ब्राह्म मुहूर्त अर्थात अमृत बेले उठकर अशरीरी होकर बाप को याद करने का विशेष अभ्यास करना पड़ेगा। और सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने के लिए ब्रह्मा बाप को फॉलो करना पड़ेगा। ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम के पिछाड़ी कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा ही पहला नंबर की आत्मा है, जो सब बात में पहला है। कर्मातीत बनने में भी पहला नंबर, सर्वगुण संपन्न बनने में भी पहला नंबर। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करने में सबसे पहला नंबर है फॉलो करना, अमृत बेले उठकर बाप को याद करना। जिसने अमृत बेले को पक्का कर लिया है, जिस ब्राह्मण आत्मा ने, वो आत्मा बाप समान बन सकती है। जिसने अमृत बेला पक्का नहीं कर पाए हैं, वो बन नहीं सकती, क्योंकि अमृत बेले योग से 7 प्रकार की प्राप्तियां हैं, जो और किसी समय योग से नहीं मिल सकती। हालांकि कभी योग करो प्राप्ति ही है, लेकिन अमृत बेला योग में 7 प्रकार की प्राप्ति है, जो और किसी समय योग में प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो वो 7 प्रकार की प्राप्ति जिस ब्राह्मण आत्मा ने अमृत बेला कर लिया, उस 7 प्राप्तियों का लाभ ले लिया, उन 7 प्राप्तियों से स्वयं को संपन्न कर लिया, वो आत्मा संपन्न सहज बन जाएगी। वो 7 प्राप्तियां कौन सी हैं, जो विशेष अमृत बेले के समय ही हैं और किसी समय नहीं? पहला है कि अमृत बेले वायुमंडल बड़ा शुद्ध सतो प्रधान होता है। सतो प्रधान वायुमंडल का प्रभाव आत्मा को सतो प्रधान बनाने में बहुत मदद देता है। पहला फायदा, वायुमंडल का सहयोग। दूसरा फायदा है कि अमृत वेले आत्मा सारी रात नींद करके उठी है, फ्रेश है। फ्रेश होने के कारण फ्रेश माइंड से बाबा को याद करना सहज है। फ्रेश माइंड से बाबा को याद करना सहज है। तीसरा फायदा है, अमृत वेले आत्मा को कोई कारोबार की जिम्मेदारी नहीं है। आत्मा निसंकल्प होकर बाबा के पास एक संकल्प में टिक सकती है, क्योंकि कोई कार्य की जिम्मेदारी नहीं। चौथी बात, पाप की आज्ञा की पालना का फल बाप से आशीर्वाद प्राप्त होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज्ञाकारी बनने का फल बाप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। पांचवी बात, वन 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 में अवश्य आ जाएंगे। वन 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 में अवश्य आ जाएंगे। छठी बात, अमृत वेले ब्रह्मा माँ स्नेही बच्चों की विशेष पालना करती है। स्नेह से शक्ति से पालना करती है। और शिव बाप अमृत वेले बच्चों को सर्व शक्तियों की किरणों के द्वारा आत्मा को समर्थ बनाते। सर्वशक्तियों की किरणों के द्वारा आत्मा को समर्थ बनाते। सातवीं बात, अमृत वेले ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में स्नेह के आधार से आपके भाग्य की रेखा जितनी लंबी खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। स्नेह के आधार से ब्रह्मा बाप के द्वारा अपने भाग्य की रेखा जितनी लंबी खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। और अमृत वेले शिव बाप के द्वारा आप अपने किए हुए सभी पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो। उस समय भगवान आपके सभी पापों को क्षमा कर देगा। अच्छा, पहला फायदा है कि वायुमंडल शुद्ध सतो प्रधान होता है। वायुमंडल का प्रभाव मन के ऊपर अवश्य पड़ता है। जैसे आप लोग अभी अपने देश से मधुबन में आए हैं, देखो यहाँ आपका योग लगा रहता है। क्यों? वायुमंडल। आप देखेंगे कोई ना कोई योग करता हुआ ही मिलेगा हर समय। तो वायुमंडल का प्रभाव मन के ऊपर गहरा पड़ता है। तो वायुमंडल सतो प्रधान है, तो सतो प्रधान वायुमंडल का प्रभाव सतो प्रधान आत्मा को बनाने में बहुत मदद देगा। वायुमंडल सतो प्रधान है, इसका प्रूफ देखो। कैसे वायुमंडल सतो प्रधान है? आप सबको अनुभव होगा या देखा होगा कि अगर कोई बीमार पड़े, सारी रात उसे नींद ना आई हो, सारी रात दर्द रहा हो, कोई भी दवा इंजेक्शन काम नहीं कर रही हो, लेकिन 4 बजे नींद अवश्य आ जाती है। देखो वायुमंडल का प्रभाव। जो दवा नहीं काम कर सकती, इंजेक्शन नहीं काम कर सकता है, वो वायुमंडल प्रभाव डाल देती, नींद आ जाती। इसके बाद देखो, एक चोर है, सारी रात चोरी करता है, दिन में भी चोरी करेगा, लेकिन सुबह 4 बजे कभी चोरी नहीं करता। चोर का भी मन बदल जाता है। आप कोई काम शाम को 2 घंटा में करोगे, आप सुबह करके देखो, आधा पौना घंटा में हो जाएगा, मन फ्रेश होता है, एक्यूरेट जजमेंट मिलती जाएगी कर्म करने के लिए। तो जब अज्ञानी आत्माओं पर वायुमंडल का प्रभाव पड़ सकता है, तो ब्राह्मण आत्माओं पर नहीं पड़ेगा क्या? अवश्य पड़ेगा। लेकिन क्यों नहीं पड़ता है? इसका कारण है कि जो अगले दिन की दिनचर्या है, वो हमारा अलबेलापन में बीता है। पहली गलती। दूसरी गलती, शाम को बाबा को चार्ट देकर नहीं सोए, इसलिए अगले दिन का बोझ आत्मा पर है, इस कारण से आत्मा हल्की नहीं हो पा रही। अगर आप वायुमंडल का लाभ लेना चाहते हैं, तो पहली बात, आज के सारे दिन पर अटेंशन रखो, क्योंकि आपके एक एक संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति सब में कमाई भी है, तो व्यर्थ जाने का बोझा भी है। अगर थोड़ी थोड़ा बोझा करते करते बड़ा हो जाता है, इसलिए आत्मा अमृत वेले हल्की होकर बाप के पास बैठ नहीं पाती। इसलिए अटेंशन की जरूरत है। दूसरी बात है, सारी रात आत्मा नींद करके उठी है। नींद करके उठने से फ्रेश माइंड उसी का होगा जिसको नींद गहरी आई होगी। दूसरी बात, कोई उल्टे पुल्टे स्वप्न नहीं आए होंगे। अगर उल्टे पुल्टे स्वप्न नहीं आए और नींद गहरी आई है तो आंख खुलते ही आपका माइंड फ्रेश होगा। अब क्या करें जो नींद गहरी आए और उल्टे पुल्टे स्वप्न भी न आए। इसका आधार है शाम को सोने के पहले बाबा को चार्ट देकर बाबा की याद में सोना। चार्ट देना अर्थात उस समय की सारी भूल गलतियों को जलाकर खत्म कर देना। पिछले साल मुरली में बाबा ने कहा था, चार्ट देना अर्थात धर्मराज की सजाओं से छूटना। चार्ट दिया माना उस दिन तक जो कुछ गलती भूल हुई थी बाबा को बताया, बाबा से क्षमा लिया, अगले दिन की प्रेरणा लिया, वो खाता खत्म हो गया। मन हल्का हो जाएगा उड़ने के लिए। और बाबा की याद में सो, अगर याद में सोएंगे तो आपकी नींद बहुत लाइट होगी और डीप भी होगी। लाइट इतनी होगी जैसे साकार बाबा के लिए बताते थे कि बाबा के कमरे के सामने पांडव भवन में जो कमरा है, कोई बच्चा जाए रात को 1 बजे या 2 बजे कभी बाबा के कमरे के सामने जाए, तुरंत बाबा कहता था आओ बच्चे, जैसे बाबा जागा हुआ बैठा है। सोता भी था लेकिन बहुत लाइट नींद थी। क्यों? क्योंकि बाबा की याद में आत्मक स्वरूप में टिककर सोया हुआ था। तो आत्मा लाइट है, बाबा लाइट है, तो नींद भी लाइट रहेगी लेकिन इतनी डीप होगी, अर्थात मन को इतना रेस्ट मिल रहा होगा कि थोड़ी देर के आराम से मन एकदम फ्रेश हो जाएगा। तीसरा फायदा, कोई कर्म का बोझ नहीं है अमृत वेले, कोई कर्म की जिम्मेदारी नहीं है। तो जिम्मेदारी ना होने के कारण, कोई भी कर्म का बोझ ना होने के कारण आप सभी संकल्पों से निसंकल्प होकर बाप के पास बाप की गोद में बैठ सकते। ये अनुभव सहज हो सकता है। ये अमृत फैले। सारे दिन तो कर्म की कुछ न कुछ जिम्मेदारी होती ही है, संकल्प नीचे आता ही है। चौथी बात है, आज्ञाकारी बनने का फल बाप का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान का आशीर्वाद साधारण बात नहीं है। जिस बच्चे को भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, एक है बाबा कहता मैं आशीर्वाद देता हूं, वो अलग रहा, लेकिन मिलता है वो तो देता है। जिस बच्चे को बाप का आशीर्वाद मिल जाए, वो बच्चा बाप समान अवश्य बन जाएगा। क्यों? बाप के आशीर्वाद में क्या जादूगरी है? यही कि जैसे देखो अपनी मम्मा थी या दादियां हैं, ये सब कर्मातीत कैसे बन गई? क्या इनके ऊपर पाप कर्म का बोझा नहीं था? क्या इनके पुराने संस्कार नहीं थे? क्या इनका अपना हिसाब किताब नहीं था? क्या सब कुछ था? मम्मा बाबा के लिए शिव बाबा कहता है नंबर वन पावन, तो नंबर वन पति। आपने मम्मा के बारे में मुरली में सुना होगा कि बाबा ने कहा मम्मा इस जन्म में मांस नहीं खाया है, लेकिन पिछले जन्म में खाया हुआ है। मतलब सब संस्कार मम्मा में थे, लेकिन क्यों कर्मातीत बन गई? क्या उससे कोई विघन नहीं आया? क्या विघन? सब आया, तन का भी मन का भी सब प्रकार का विघन आया, लेकिन बाप का आशीर्वाद जो विघन आता है उसको दबा देता है। जैसे ये थोड़ी गहरी चीज समझने की, जैसे हम सब पुरुषार्थ करते हैं, अभ्यास करना शुरू किया कि मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं, अब संकल्प ये कर रहे हैं, लेकिन पुराने संस्कार पुराने हिसाब किताब देह भान में ला रहे, मन भटका रहे। लेकिन जिसको बाप का आशीर्वाद होगा उसको देह भान इमर्ज होने नहीं देगा, ये आशीर्वाद दबा देता है। पूरा पुरुषार्थ करके मम्मा कर्मातीत बनी, लेकिन पुरुषार्थ में रुकावट नहीं आई। हमारे पुरुषार्थ में रुकावट है, जो करना चाहते कर नहीं पा रहे। कारण पुराने संस्कार या पुराने हिसाब किताब। लेकिन बाप का आशीर्वाद पुराने संस्कार या पुराने हिसाब किताब को दबा देता है, पुरुषार्थ में रुकावट नहीं आने देता। जैसे दादियों को देखो या मम्मा को, बीमारी थी, मम्मा कम बीमार नहीं थी, काफी बीमार पड़ी, लेकिन दर्द नहीं था। ये आशीर्वाद का फल है। गुलजार दादी का भी ऑपरेशन हुआ कैंसर का, डॉक्टर पूछता दादी कहाँ दर्द है, वो डॉक्टर पूछ के रहे दादी कहती कहीं दर्द ही नहीं है, कहीं दर्द ही नहीं है। अब डॉक्टर कहे मैं क्या दवा दूं, कैसे दवा दूं, कहीं दर्द ही नहीं है। ये आशीर्वाद का फल पुरुषार्थ में रुकावट नहीं डालता है। तो आज्ञाकारी बनने का फल पाप का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और ये आशीर्वाद हमारे पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में बहुत मदद दे देता। जो आशीर्वाद नहीं ले पाएगा वो पुरुषार्थ में बढ़ नहीं सकता। पांचवी बात है, वन 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 में आ जाएंगे। अर्थात जब से लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू होगा उसी समय से वो राजधानी में या राजघराने में होंगे। राजघराने में आने का आधार है कि अमृत वेले आत्मा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करती है योग में, तो राजघराने में आएगी। अगर अमृत वेले उठती है लेकिन सुबह योग में सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर पाती है तो राजधानी में आएगी, लेकिन आएगी 111 में अवश्य। 72 की मुरली में बाबा ने कहा था, मुरली की हेडिंग थी समय की पुकार, उसमें बाबा ने कहा था कि जो बच्चा यहाँ जितनी देर से उठता है 4:05 10 मिनट जो भी, जो बच्चा यहाँ जितनी देर से उठता है वो सतयुग में उतनी देर से आएगा। जो बच्चा यहाँ जितना घंटा लेट उठता है सतयुग में उतना जन्म कम होगा, और जो बच्चा 4:45 योग करता नहीं, उठता ही नहीं है, वो स्वप्न भी न देखे कि हम सतयुग में आएंगे भी। इतना बड़ा अमृत वेले का महत्व है 4:45। कई बाबा के बच्चे 2 उठते हैं योग करते हैं। 2 उठना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 से 4 तक योग करते 3:30 तक फिर सो जाते हैं, ये गलत है। जो 2 उठता है 4 से पहले जितना उठकर योग करता है उसको कहा जाता है ओवर टाइम। ओवर टाइम का डबल पैसा मिलता है जो पहले उठते हैं, लेकिन ओवर टाइम तब कहा जाता है जब ड्यूटी के टाइम ड्यूटी करने के बाद एक्स्ट्रा करे तब ओवर टाइम कहलाता है। अगर आप 2 से और 4 तक योग करके सो गए तो वो ओवर टाइम नहीं है, वो पार्ट टाइम है। पार्ट टाइम का थोड़ा पैसा मिलता है। ओवर टाइम आपका तब बनता जब 4:45 तक योग करते तब। 2 उठो अहो सौभाग्य, क्योंकि फॉलो फादर में पहला कदम यही है 2 उठना। अगर नहीं उठ सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 4:45 योग अवश्य करना है। तो 111 में आ जाएंगे। अगर 4:05 भी आप योग में लेट आते हैं, एक जन्म भी कम हो गया, तो कभी भी इस आंखों से श्री कृष्ण को साकार में देख नहीं सकेंगे, कभी भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पहले जन्म के बाद श्री कृष्ण का नाम रूप बदल जाएगा दूसरे जन्म, देख नहीं सकेंगे। इसलिए अमृत वेले को ये पक्का करो, बहुत जरूरी है। है ऐसी ब्राह्मण आत्माएं जिसने जब से ज्ञान लिया है और आज तक किसी भी कारण से, चाहे बीमार पड़े चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन 4:45 का योग मिस नहीं किया है। ऐसी महान आत्माएं, मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ? पावरफुल तो रोज लगता नहीं है, वो तो फर्क होता है, वो तो होता है किया है, ये तो फिक्स है। वन 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 में आएंगे, जितनी प्राप्ति उतना, ये कम बात नहीं है। वन वन में आना, इन आंखों से श्री कृष्ण को देखना, क्योंकि भगवान के बाद श्री कृष्ण ही है। जैसे शिव बाबा को तो, ब्रह्मा बाबा को तो फिर भी इस समय अव्यक्त रूप में देख रहे हैं, श्री कृष्ण को तो अव्यक्त रूप में भी नहीं देख सकेंगे, क्योंकि वहां अव्यक्त का ज्ञान ही नहीं है। साकार बाप को इस आंख से तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी अव्यक्त रूप से तो मिल रहे हैं, देख रहे, श्री कृष्ण को नहीं देख पाएंगे। इसलिए अमृत वेले महत्व को समझो। इसके बाद है छठी प्राप्ति की, अमृत वेले ब्रह्मा मां, जिन बच्चों का ब्रह्मा मां से स्नेह है, ऐसे बच्चों को ब्रह्मा मां वतन में इमर्ज करती है और इष्टा सकाश देती है। जिस बच्चे का ब्रह्मा मां से स्नेह है, ऐसे बच्चे को ब्रह्मा मां वतन में इमर्ज करके इष्टा सकाश देती है, जिससे वो बच्चा समर्थ बन जाता है। जैसे बाबा ने उदाहरण देकर बताया था कि लौकिक में माँ सुबह सुबह बच्चे को नहला धुला करके, कुछ खाना दे करके स्कूल भेजती है, जब तक बच्चा वापस आए तब तक के लिए समर्थ बनाकर भेजती है। ऐसे ब्रह्मा माँ ये बच्चों की इष्टा खात्री करती है, स्नेह से शक्तियों से पालना करती है। और अमृत वेले शिव बाप सर्व शक्तियों रूपी किरणों से बच्चों की पालना करते, सर्व शक्तियों रूपी किरणों से हर आत्मा रूपी बच्चे को समर्थ बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, सब बुराइयों से मुक्त करते हैं। ये विशेष पालना अमृत पहले शिव बाप करते। इसके बाद सातवां, अमृत वेले ब्रह्मा बाप से आप स्नेह के आधार से अपने भाग्य की रेखा जितना लंबी खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। उस समय ब्रह्मा बाप स्नेही रूप है, उस समय हिसाब किताब का रूप नहीं है कि इस बच्चे का ये कर्म है इसलिए इसका भाग्य है, नहीं। उस समय हिसाब किताब का रूप नहीं है, स्नेह का रूप है। स्नेह के आधार से जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो, आपके स्नेह के ऊपर आधारित है। और शिव बाप से आप अपने किए हुए पाप कर्मों को बख्शवा सकते, सकते हो अर्थात क्षमा ले सकते हो। उस समय शिव बाप भोलेनाथ के रूप में हैं, धर्मराज के रूप में नहीं, भोले भंडारी के रूप में। उस समय शिव बाप आपके पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए बैठा है। एक मुरली बाबा ने चलाई थी कि शिव बाप को रिझाना चाहो, मनाना चाहो, कुछ करवाना चाहो, बाप अपने पाप को बख्शवाना चाहो, सब करा सकते हो। उस समय भगवान भोलेनाथ के रूप में बच्चों के लिए बैठा हुआ है। ये है अमृत वेले का महत्व। अब जो आत्मा अमृत वेले इतनी सातों प्रकार के लाभ को ले सकती है वो संपन्न बन जाएगी। लेकिन अमृत वेले इनका सहयोग है, लेकिन अमृत वेला हम सफल कर नहीं पा रहे। उठते भी हैं लेकिन सफल नहीं कर पा रहे हैं। कारण, सफल ना करने का कारण है यथार्थ विधि से योग का अभ्यास नहीं। बिना यथार्थ विधि से सफलता मिलती नहीं, क्योंकि यथार्थ विधि हो और अमृत वेला है तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि अमृत वेले का प्रभाव सारे दिन की दिनचर्या पर पड़ता है। अमृत वेला पावरफुल तो सारा दिन आपका श्रेष्ठ रहेगा। अगर अमृत वेला पावरफुल है तो जैसे बाबा ने एक उदाहरण देकर बताया था कि जब ट्रेन चलती है तो इंजन को मेहनत लगती है, लेकिन जब स्पीड पकड़ लेती है तो इंजन चलना बंद कर दे तो भी ट्रेन काफी दूर चली जाती है। ऐसे अमृत वेले अगर आत्मा पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ ले तो सारा दिन निमित्त मात्र अटेंशन देने से आपके पुरुषार्थ की रफ्तार चलती रहेगी। लेकिन ट्रेन स्पीड पकड़ने के बावजूद तभी चलती है जब पटरी पर रहती है। तब अगर पटरी से उतर जाए तो वहीं रुक जाती है। ऐसे अपना सारा दिन पुरुषार्थ की पटरी है। कौन सी दो पटरियां हैं जिस पर आप चलेंगे तो आपका पुरुषार्थ बढ़ता रहेगा, नहीं तो कितना भी मेहनत करोगे बढ़ नहीं सकेगा। कौन सी है वो दो पटरी? है श्रीमत और दृढ़ संकल्प। श्रीमत और दृढ़ संकल्प। अगर सारे दिन में संकल्प बोल कर्म में श्रीमत के विपरीत अपनी मन मत को यूज किया तो अपना इंजन बाप दादा है, उससे शक्ति मिलना बंद हो जाए, आपका पुरुषार्थ वहीं रुक जाएगा। तो एक तो श्रीमत, दूसरा दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प हो तो सफलता अवश्य मिलेगी। क्यों? भगवान का वायदा है, हिम्मते बच्चे मध्य बात, दृढ़ संकल्प करना अर्थात हिम्मत रखना कि मैं जरूर करूंगी ये, तो बाबा की मदद अवश्य मिल जाती है। फिर आपका पुरसारा चल सकता है, लेकिन अमृत बेले आपका योग अच्छा लगे, योग पावरफुल लग जाए, उसका आधार है आपका पहला संकल्प। चेक करना, आंख खुलते ही आज चेक करके देखना, आंख खुलते ही जो संकल्प आता है वो सभी संकल्पों को लेकर के आता है। आंख खुलते ही जो आपका संकल्प आया, योग में उसी संकल्प की लहर रहेगी, उसको हटा नहीं पाएंगे। मेजॉरिटी तीन प्रकार के संकल्प होते, कोई सोकर उठते ही घड़ी देखते हैं कितना बजा है, कोई सोकर उठते ही घड़ी देखते हैं, कोई सोकर उठते ही जो अगले दिन की दिनचर्या का प्रभाव मन पर रह गया है वो सोकर उठते ही याद आ जाता है, और कोई सोकर उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग करते। ये तीन प्रकार के कोई ना कोई संकल्प आते हैं। अब तीनों संकल्प की रिजल्ट क्या है? जो सो करके उठते ही घड़ी देखते हैं, अनुभव भी होगा आज कर भी लेना, वो जब योग में बैठेंगे हर 5 मिनट के बाद घड़ी देखेंगे, अभी कितना बीता है, कितना समय बाकी, कितना समय बाकी, वो घड़ी कॉन्शियस ही रह जाएंगे। अगर घड़ी नहीं है तो भी इधर उधर देखेंगे कितनी देर बाकी है, या सोचेंगे कब योग पूरा होगा, कब योग पूरा होगा, वो टाइम कॉन्शियस ही रह जाएंगे, इससे अलग नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, जो अगले दिन की दिनचर्या का प्रभाव जो है वो सो करके उठते ही जो याद आया तो बस उसकी लाइन लग जाती है, फिर वो संकल्प तोड़ नहीं पाते, वही बात घड़ी घड़ी याद आती है। अब कईयों को संकल्प चलता होगा कि सोकर उठते ही घड़ी ना देखें, क्या नहीं देखो, लेकिन सोकर उठते पहले घड़ी नहीं देखो, सोकर उठते ही पहले बाप दादा से गुड मॉर्निंग करो, बाप दादा गुड मॉर्निंग कितना भी बजाओ, पहले बाबा को देखो, घड़ी बाद में देखो, पहले घड़ी नहीं देखो, ठीक है? पहले उठते ही घड़ी नहीं, बाबा दिखाई दे, और फिर जो अगले दिन की दिनचर्या का प्रभाव उससे मुक्त होने की विधि, अगले दिन चार्ट देख करके बाबा की याद में सोना। चार्ट के लिए बाबा ने बताया था कि जैसे कोई मान लो अपने घर की सफाई करे, सफाई करके कीचड़े को कहीं दूर कोने में रख दे, जलाए नहीं, फेंके नहीं, तो कीचड़े से क्या पैदा होगा? मच्छर किसको काटेंगे? ऐसे चाट देना अर्थात कीचड़ा जलाना, चाट देना अर्थात कीचड़ा, पास्ट का कीचड़ा जला देना। अगर चाट नहीं दिया तो स्वप्न में संकल्प में जरूर वो बात आती रहेगी, और योग में बार बार वही बात आएगी। अव्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में स्थित हो नहीं सकेंगे, बाबा के सन्मुख बैठ नहीं सकेंगे, कोशिश करके जाएंगे लेकिन तुरंत नीचे आ जाएंगे। फिर बात याद आ जाएगी, बाबा के पास बैठ नहीं पाएंगे, और कई सो करके उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग करते, बाबा गुड मॉर्निंग रांग है, बाप दादा गुड मॉर्निंग बहुत बड़ी बात है। सिर्फ बाबा गुड मॉर्निंग नहीं, बाप दादा गुड मॉर्निंग, माँ बाप दोनों, कि सिर्फ बाबा गुड मॉर्निंग नहीं लेकिन बाप दादा गुड मॉर्निंग, दोनों से गुड मॉर्निंग करनी है, दोनों का आशीर्वाद लेना है। गीत है ना अपना, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर्फ बाप की नहीं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। माँ और बाप दोनों से आशीर्वाद लेना है, लेकिन बच्चों का ब्रह्मा के प्रति इतना क्यों नहीं झुकाव हो पाता है? कारण इसका ये है कि अभी तक ब्रह्मा से हमें क्या प्राप्तियां हैं ये स्पष्ट ना होने के कारण ब्रह्मा से प्यार जुट नहीं पाता है। सोचते हैं सब कुछ शिव बाबा से मिलेगा, इस कारण से अपना पूरा बुद्धि योग शिव बाबा के साथ लगाते हैं, लगाना भी चाहिए, लेकिन ब्रह्मा से प्राप्ति कम नहीं है। ब्रह्मा से प्राप्ति उतना ही है जितना शिव बाबा से। ब्रह्मा नेक्स्ट टू गॉड है, ब्रह्मा कम नहीं है, लेकिन ब्रह्मा को सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं ने शिव बाबा का मीडियम समझा है बस। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देता है, नहीं, ब्रह्मा से बहुत कुछ प्राप्त है। कई ब्रह्मा को साधारण इसलिए समझ लिया है कि साकार मुरली में जो सुनते हैं कई जगह कि इस ब्रह्मा का फोटो नहीं रखो, ये भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है, ये अलौकिक बाप है, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये भी शिव बाबा से ही लेता है। तो जो ऐसे शब्द साकार मुरली में सुने हैं, इससे ब्रह्मा बाप से जो सम्मान ब्रह्मा बाप के प्रति होना चाहिए, जो स्नेह होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। जब शिव बाबा कहता है फॉलो फादर तो किसको कहता है? ब्रह्मा को कहता। तो ब्रह्मा को हम फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाप से स्नेह नहीं। स्नेह क्यों नहीं? क्योंकि ब्रह्मा बाप से क्या क्या प्राप्तियां हैं वो अनुभव नहीं, नॉलेज नहीं। और दूसरा, ब्रह्मा कितना महान है उस महानता का अनुभव न होने के कारण ब्रह्मा के प्रति रिगार्ड नहीं। रिगार्ड महानता से, स्नेह प्राप्ति से होता है, और ये दोनों न होने के कारण ना ब्रह्मा से स्नेह जुट पा रहा है ना ब्रह्मा का रिगार्ड रख पा रहे। अगर ब्रह्मा का रिगार्ड रख सकते तो आज ही पूरा फॉलो कर लेते, लेकिन नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। कारण, क्योंकि महान समझते नहीं। फॉलो तो महान चीज का किया जाता है, जब समझे। जैसे शिव बाबा को आप क्यों फॉलो करते हो, क्यों याद करते हो? क्योंकि समझते हो शिव बाबा बड़ा है, समझते हो शिव बाबा से प्राप्ति है, तभी तो याद करते हो। बड़ा है तभी तो उसको रिगार्ड रख रहे हो। जब तक नहीं जानते थे कहां रिगार्ड रखते थे? क्या कहते थे? कुत्ता बिल्ली सब में तुम ही है। महानता ही नहीं जानते थे, तो जो जानते थे बोलते थे। तो ब्रह्मा बाप से उतनी प्राप्ति है जितने शिव बाबा से। आज आपको कंट्रास्ट में बताते हैं कि शिव बाबा से क्या मिलता है और ब्रह्मा बाबा से क्या मिलता है। शिव बाबा है बाप और ब्रह्मा भी है बाप। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा बाप है ब्राह्मणों का बाप। दोनों बाप है। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा बाबा है ब्राह्मणों का बाप। बाप माना वर्षा, बाप माना वर्षा। आत्मा को शिव बाबा से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। आत्मा को शिव बाबा से 21 जन्म का वर्षा मिलता है और ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से क्या मिलता है? बाप माना वर्षा। अगर बाप है तो मिलता जरूर है। तो ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से क्या मिलता है? बोलो ब्राह्मण आत्माएं, जी, ज्ञान। ब्रह्मामुख जन्म हुआ, दिया किसने? तो बड़ा कौन हुआ? शिव बाबा। मैं ब्रह्मा की महिमा वो है जो शिव बाबा की नहीं है, कंट्रास्ट है। ब्रह्मा कम नहीं है, शिव बाबा से भी मिलता है, लेकिन ब्रह्मा से भी मिलता है। जो ब्रह्मा से मिलता है वो शिव से नहीं मिलता है। ज्ञान, प्यार का सागर तो शिव बाबा है। बच्चे मास्टर हो सकते हैं लेकिन सागर तो एक ही। अच्छा, ब्रह्मा बाप से ब्राह्मणों को, क्योंकि बाप अलौकिक है तो वर्षा भी तो अलौकिक होगा ना, तो ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से संपूर्ण श्रेष्ठ चरित्रवान और कर्मातीत बनने का वर्षा ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से मिलता है। संपूर्ण श्रेष्ठ चरित्रवान और कर्मातीत बनने का वर्षा ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से मिलता है। कैसे संपूर्ण बने, कैसे श्रेष्ठ बने, कैसे चरित्रवान बने, कैसे कर्मातीत बने, फॉलो फादर, अलौकिक वर्षा है ये ब्रह्मा बाप से ब्राह्मणों को मिलता है। ठीक, शिव बाबा है ज्ञान का सागर और ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा है बोलो शक्तियां, क्लास में शक्तियों की संख्या ज्यादा है, पांडव बहुत कम है। हाँ जी बोलो, शिव बाबा है ज्ञान का सागर और ब्रह्मा बाबा है जी संपूर्ण महिमा की बात बताओ, ज्ञान ब्रह्मपुत्र कोई महिमा थोड़ी हुई, महिमा मतलब शिव बाबा से आगे कंट्रास्ट है, ब्रह्मा कम नहीं है जी। 16 कला संपूर्ण, शिव बाबा से तो छोटा हुआ ना, अच्छा अच्छा सुनो, शिव बाबा है ज्ञान का सागर और ब्रह्मा बाबा है अनुभवी, अनुभवी शिव बाबा जब पहले दिन आया और ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो, ये तो तुम्हारा वस्त्र है शरीर, इसको तो बच्चे एक सेकंड में इस भान को छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम असल में हो ही आत्मा। अब शिव बाबा को ये कहना सहज है क्योंकि कभी शरीर लेता ही नहीं, लेकिन इस देह के भान को छोड़ने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये ब्रह्मा जानता है। शिव बाबा ये जानता है मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये नहीं जानता कैसी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि कभी किया ही नहीं। तो ब्रह्मा है अनुभवी, तो ज्ञानी बड़ा होता है अनुभवी बड़ा होता है दोनों बड़े होते हैं। अच्छा, इसके बाद है शिव बाबा है बरदाता और ब्रह्मा बाबा, सहज बात, शिव बाबा है बरदाता और ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता। शिव बाबा है बरदाता और ब्रह्मा बाबा है भाग्य विधाता। इसके बाद शिव बाबा है बाप और ब्रह्मा मां, शिव बाबा बाप है और ब्रह्मा माँ है, माँ और बाप में अंतर होता है। माँ हमेशा बच्चों का पक्ष लेती है। आप लौकिक में देखो, अगर बच्चा लौकिक में बच्चा सारा दिन घर में माँ को तंग करता है, फिर बात तो चला जाता है ऑफिस में, बच्चा माँ के पास रहता है सारा दिन, माँ को तंग करता है, लेकिन शाम को जब बाप घर में आता है तो बच्चा माँ को, माँ बच्चे को बाप के आगे ले जा करके बच्चे की बड़ी महिमा करती है, तुम्हारा बच्चा ऐसा है, लाडला है, ऐसा है, जो तंग किया सब भूल गया। तो माँ बच्चे का पक्ष लेती है। माँ का काम है बाप के दिल पर चढ़ाना। इसलिए शिव बाबा की मुरली में सुनते हैं कि जो ब्रह्मा के दिल से उतरा सो शिव के दिल पे नहीं चढ़ सकता। तो शिव के दिल पर चढ़ाने का काम ब्रह्मा का है, माँ है, बच्चों का पक्ष लेती है। माँ बच्चों का पक्ष लेती है, इसका प्रूफ है कि जब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की आपस में रूह रिहान होती है, वतन में चिटचैट होती है, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहता है कि बाबा आप मुझे चाबी दे दो, मैं अभी बच्चों को संपूर्ण बना दूं। बच्चों की मेहनत मेरे से देखी नहीं जाती, ये ब्रह्मा शिव बाबा को कहता है। अब शिव के बच्चे हैं और ब्रह्मा के बच्चे हैं, बच्चे तो हम दोनों के, लेकिन ब्रह्मा को ये संकल्प क्यों आ रहा है? क्योंकि माँ है। शिव बाबा भी मुरली में कहता है कि बच्चों की मेहनत मेरे से देखी नहीं जाती है, मुरलियों में कहता है। अच्छा, मेहनत देखी नहीं जाती है तो आप तो सर्वशक्तिमान हो ना, शक्ति देकर क्यों नहीं समर्थ बना देते हो? लेकिन नहीं, कहता है हिम्मत रखो तो मदद मिलेगी, ऐसे नहीं, हिम्मत रखो तो मदद मिलेगी, ऐसे मदद नहीं देता है। तो माँ बच्चों का पक्ष लेती है कि बाबा चाबी दे दो, अभी बच्चों को संपूर्ण बना दो। इसके बाद देखो, शिव बाबा है प्यार का सागर और ब्रह्मा बाबा है महिमा के शब्द बताना। ब्रह्मा बाबा है, बोलो फरिश्ते बोलो, ब्रह्मा बाबा है, बता रहे हैं कुछ? ब्रह्मा बाबा है रूहानी ममता की मूरत, रूहानी ममता की मूरत। शिव बाबा प्यार का सागर है, सागर होते हुए भी प्यार बच्चों को नंबरवार देता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जिस बच्चे का जैसा पुरुषार्थ वैसा बाप से प्यार मिलता है। लेकिन जहां ममता होती है, ममता, वहां ममता में बच्चों की कमी नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए ममता नंबरवार नहीं गाई है, प्यार नंबरवार गाया हुआ। तो ब्रह्मा है रूहानी ममता की मूरत, ठीक है? ऐसी ममता माँ में अनुभव होती है ना, कि रूहानी ममता की मूरत है। उस ममता में बच्चों के जैसे आस्था स्नेह के प्यार की पालना देता है। इसके बाद आप लोगों को अनुभव हो गया, सुना होगा कि बैंक में लॉकर्स होता है, और उस लॉकर्स की विशेषता यही है कि उसकी दो चाबी होती है। देखा है ना लॉकर्स बहने सबने? नहीं देखा है? लॉकर्स माना तिजोरी, उसकी दो चाबी होती है। उस लॉकर्स में आप जो भी खजाना रख दो, वो खजाने का सिर्फ आपको पता है, बैंक वाले को भी पता नहीं। लेकिन यही उस लॉकर्स की विशेषता की दो चाबी है, एक चाबी आपके पास रहती है, एक चाबी बैंक वाले के पास रहती है। आपका खजाना आप अपनी चाबी लगाकर चाहो खजाना ले लो, नहीं मिलेगा जब तक बैंक वाला चाबी ना दे, या बैंक वाला चाहे सिर्फ ले ले, जब तक आपकी चाबी नहीं मिलेगी नहीं मिल सकता है। एक चाबी आपके पास रहती है, एक चाबी बैंक वाले के पास रहती है। ऐसे शिव बाबा का खजाना सो आपका खजाना बर्थ राइट है, चाबी भी आपके पास है। मेरा बाबा ये खजाना लेने की चाबी है, लेकिन शिव बाबा का खजाना सो आपका खजाना, मेरा बाबा चाबी होते हुए भी जब तक ब्रह्मा की दूसरी चाबी नहीं मिलेगी तब तक शिव बाबा का खजाना आपका खजाना नहीं हो सकता। बिना ब्रह्मा की दूसरी चाबी अब भी शिव बाबा मुरली ब्रह्मा के द्वारा ही सुना रहा है। अब भी जो अव्यक्त मुरली सुनते हो ब्रह्मा के द्वारा ही सुना रहा है। शिव बाबा अपना सारा खजाना ब्रह्मा के द्वारा देता है। बाबा मुरली में कहता है, कई बच्चे कहते हैं कि हमारा तो शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है, हम शिव बाबा से वर्षा ले लेंगे, ब्रह्मा भी शिव बाबा से वर्षा लेता है। तो ऐसे बच्चे को बाबा कहता है, अगर तुम्हारा ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं तो देवता बनने से भी कनेक्शन नहीं, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता हैं, आत्मा सो देवता नहीं है। जब तक ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा बाप के बच्चे ब्राह्मण हैं, तो ब्रह्मा बाप के थ्रू आपको मिलेगा। इसलिए अमृत बेले उठकर सिर्फ बाबा गुड मॉर्निंग नहीं, लेकिन बाप दादा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोनों से करो, याद शिव बाबा को करो। गुड मॉर्निंग दोनों से करो, याद शिव बाबा को करो, स्नेह ब्रह्मा से रखो। स्नेह का मतलब है फॉलो करना, स्नेह का मतलब फॉलो करना। जैसे लौकिक में देखा होगा कई सपूत बच्चे होते हैं अज्ञान काल में, तो बाप शरीर छोड़ गया है तो उसका फोटो घर में रख लेते हैं, सुबह अगरबत्ती करते हैं और मन में संकल्प करते हैं कि बाबा जो आप हमें बताकर गए हो, जो हमें डायरेक्शन देकर गए हो, वो हम अवश्य करेंगे। ये है स्नेह। तो स्नेह अर्थात फॉलो फादर। तो स्नेह ब्रह्मा बाप से करो, याद शिव बाबा को करो, गुड मॉर्निंग दोनों से करो। ये है अमृत बेले का यथारथ विधि। लेकिन आपकी गुड मॉर्निंग दोनों तक पहुंच जाए, क्योंकि पहले संकल्प का प्रभाव और संकल्पों पर आता है। तो जब आप पहले संकल्प में इस शरीर से डिटैच हो जाएं, निराकारी और आकारी दोनों बन जाएं, तब दोनों से गुड मॉर्निंग एक साथ हो सकती है, क्योंकि शिव बाबा निराकारी है और ब्रह्मा बाबा आकारी है। तो जब निराकारी और आकारी दोनों बन जाओ, तब दोनों से गुड मॉर्निंग एक साथ हो सकती है। उसकी विधि बताते हैं, आज प्रयोग करके देखना, सुबह उठना देखना योग कितना अच्छा लगता है। आंख खुलते ही आपका पहला संकल्प आए। बाबा ने एक उदाहरण देकर बताया था कि जैसे आप सृष्टि के आदि में आप परम धाम से उतरकर सतो प्रधान चोला धारण कर देव आत्मा कहलाएंगे, ऐसे आंख खुलते ही आपका पहला संकल्प आए कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हो ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूँ। अच्छा मीठे बाप दादा गुड मॉर्निंग। मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हो ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूँ। अच्छा मीठे बाप दादा गुड मॉर्निंग। ये आपका जो पहला संकल्प है कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ, ये शरीर से कुछ ना कुछ डिटैच अवश्य करेगा, और जितना इससे डिटैच होंगे उतना बाबा से कनेक्शन अवश्य जुटेगा, और जितना कनेक्शन जुटा उतनी प्राप्ति अवश्य होगी। और अगर पहले संकल्प में आत्मा को प्राप्ति हो गई खुशी और शक्ति की, तो आत्मा पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ लेगी। तो मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हो ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूँ। तो आत्मा के नाते शिव बाबा से गुड मॉर्निंग हो गई, और ब्राह्मण के नाते से ब्रह्मा बाप से गुड मॉर्निंग हो गई, दोनों से एक साथ गुड मॉर्निंग करो। आपकी गुड मॉर्निंग पहुंची तो खुशी और शक्ति की अनुभूति अवश्य होगी। अभी हम सब गुड मॉर्निंग नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करते, मैं आत्मा हूँ ये शरीर नहीं हूँ, शरीर से डिटैच होकर सूर्य तारा गण के पार, नीचे से ऊपर जाने में बहुत झंझट है, बहुत मुश्किल पड़ता है, लेकिन ऊपर से अवतरित हुई हूँ ही न्यारी, तुरंत बाप से कनेक्शन जुट जाएगा। इस विधि से गुड मॉर्निंग करके फिर आप योग का अभ्यास करो, फिर देखो कैसे प्राप्ति होती है। फिर आप अमृत वेले को जिस रीति से चाहते हैं उसी प्रकार से सफल कर सकेंगे, अर्थात सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम।